आन्या निहाल से बचकर भाग रही थी कि अचानक विक्रांत उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपने गुस्से से नीली आंखों से उसे ऐसे घूरने लगा जैसे आंखों से ही मार डालेगा। उसका भयानक चेहरा देखकर आन्या घबरा गई और उसके कदम ठिठक गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़कर पीछे खींच लिया। आन्या की सांसें थम गई। सामने विक्रांत था तो पीछे निहाल, और दोनों की गुस्से से भरी नीली निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। आन्या ने निहाल को देखा तो उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर तुम सच में वैम्पायर हो तो पी जाओ मेरा खून, मार दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर मैं अन्वय के अलावा कभी किसी और की नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारा होना मंजूर नहीं, मैं उसकी दीवानी हूँ और उसके दीवानी बनकर ही मरना चाहती हूँ। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मैं एक मामूली सी इंसान हूँ। तुम तो वैम्पायर हो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मामूली इंसान नहीं हो तुम, निहाल ने जैसे ही इतना कहा विक्रांत के गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। निहाल, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, ये हम सब के लिए खतरा बन सकती है, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आई है। इससे पहले कि इसे इसकी शक्तियों का एहसास हो या अन्वय इसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे, हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसके मरते ही हमारा आधा काम हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के बाद अन्वय को अपने रास्ते से हटाना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर अन्वय और इसका मिलन हो गया तो हम सबका नाश हो जाएगा, इसलिए इसको मेरे हवाले कर दे। आन्या मेरी है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, वो मेरी बनेगी, उसके बाद उसका अन्वय से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। जब उसकी शक्ति पर मेरा अधिकार होगा तो वो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उसको ख़त्म करने के लिए आन्या का मरना नहीं, अन्वय का उससे दूर होना ज़रूरी है, और उसे अपना बनाकर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अन्वय से दूर कर दूंगा। आपको उसको मारकर उसका क्षेत्र अपने कब्जे में लेना है तो शौक से लीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं आन्या को मरने नहीं दे सकता, नहीं मान सकता आपकी बात। सामने से हट जाइए, हम अभी इसी वक्त यहाँ से और अन्वय से बहुत दूर चले जाएंगे, निहाल ने आन्या को अपने पीछे करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विक्रांत गुस्से से भड़कते हुए बोला, निहाल पागल मत बन, उसे मेरे हवाले कर दे। आज अन्वय को ख़त्म करने से पहले इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। निहाल उसकी बात का विरोध करने लगा। दोनों भाइयों में बहस होने लगी। आन्या आंखें बड़ी बड़ी करके उनकी बातों को सुन रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वे ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों उसे मारना चाहते हैं, पर उनकी बातों से वो इतना तो समझ गई थी कि वे आज अन्वय को मारने वाले हैं और उससे पहले उसे मारना चाहते हैं। वजह नहीं समझ सकी वो, ये भी नहीं समझ पाई कि उसे अन्वय से दूर क्यों रखना चाहते हैं सब। पर उसने इन सब में वक्त बर्बाद करने से बेहतर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने का फैसला किया और धीरे धीरे खिसकते हुए निहाल से दूर चली आई और दरवाजे की तरफ भाग गई। जैसे ही वो बड़े से गेट को पार करके आगे बढ़ी, बहुत से वैम्पायर्स और चमगादड़ों ने उसे घेर लिया, जिससे वो पूरी तरह घबरा गई। उसने कदम पीछे हटाने चाहे पर किसी के सीने से टकरा गई। उसने घबरा कर पलट कर देखा तो पीछे निहाल खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। वो कुछ करता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। निहाल ने तुरंत आन्या की गर्दन पर अपनी बाजू कस दिए। अन्वय, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो अभी ही इस लड़की को मार दूंगा। आन्या बुरी तरह घबरा गई। जब उस हवा के झोंके ने उसे छुआ था तो एक जाना पहचाना सा खूबसूरत सा एहसास उसे छूकर गुजर गया था, पर अब एक बार फिर वो निहाल के कब्जे में थी। निहाल के चिल्लाते हुए वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल काला धुआं उठा और विक्रांत, शाश्वत, प्रताप और बाकी सभी वहां मौजूद थे। सब भयानक और डरावने लग रहे थे, जिससे आन्या की सांसें अटकी हुई थीं। वहां अब किसी के होने की आहट नहीं हो रही थी, पर आन्या अन्वय की खुशबू महसूस कर पा रही थी और उसकी बेचैनी निगाहें इधर उधर दौड़ते हुए उसे ही ढूंढ रही थीं। कुछ सेकंड तक निहाल ने इंतजार किया, पर अन्वय सामने नहीं आया। वो महल के छत पर बैठा नीचे अपनी नीली आंखों से देख रहा था। महल को चारों ओर से उसके साथियों ने घेरा हुआ था और सबको अन्वय के संकेत का इंतजार था। उसके बाद वे हमला कर देते उन पर अन्वय को पहले आन्या को उनके चंगुल से सही सलामत बाहर निकालना था, इसलिए अभी उसने सबको रुकने कहा था। वो तो आन्या को लेकर उड़ चुका होता, पर इस वक्त पर निहाल ने आन्या को अपनी तरफ खींच लिया और उसे मारने की धमकी दी, तो अन्वय वहां से उड़ गया। वो ऊपर छत से चमगादड़ के भेस में लटका सबको देख रहा था। जब कुछ वक्त बाद भी वो सामने नहीं आया तो निहाल वैम्पायर में तब्दील हो गया और आन्या की गर्दन की तरफ झुकते हुए बोला, मैं जानता हूँ तू यहीं कहीं है, दिखाता नहीं है तू, पर मेरी तरह तू भी दीवाना है इस लड़की का, इसलिए इसे मुझसे बचाने यहाँ आया है। वैसे तो मैं इसे सिर्फ अपना बनाना चाहता था, इसको मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा, पर ये तो तेरी दीवानी है, मेरा होना इसको मंजूर नहीं और इसे तेरा होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए या तो आज तू मरेगा या तेरी ये दीवानी। अगर तू अगले 2 सेकंड के अंदर मेरे सामने नहीं आया और अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं अभी ही इसका सारा खून पीकर इसको अभी इसी वक्त जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर अन्वय की आंखें भयावह हो गईं। एकदम नीली आंखों से वो उसे घूरने लगा पर उनके सामने नहीं आया तो निहाल कुटिल मुस्कान के साथ आनिया की कमर को थामते हुए बोला, लगता है जिसकी तू दीवानी बनी घूमती है उसे तेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चल कोई बात नहीं, जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों इतना सोचूं। तुझे मेरी बनना मंजूर नहीं तो अभी तेरे शरीर से तेरे प्राण अलग कर देता हूँ, उसके बाद तो मेरी न सही कभी उसकी भी नहीं बन सकेगी। इतना कहते हुए उसने आनिया की गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए। दर्द से आनिया की आह निकल गई, उसने अपनी आंखें भींच ली। सबके चेहरों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। निहाल उसका खून पीने ही वाला था कि अचानक ही तेज हवा चलने लगी। निहाल के लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। 1 सेकंड बाद ही तूफान थम गया और अन्वय निहाल के एकदम सामने खड़ा उसे नीली भयानक आंखों से घूर रहा था। निहाल ने अपने सर पीछे हटा लिया पर आनिया को छोड़ा नहीं। आनिया ने अब भी अपनी आंखें भींचा हुआ था, दर्द चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कंधे पर से कपड़ा फटा हुआ था, चेहरे पर और गर्दन पर पकड़ने और दांतों के निशान बने गए थे। ये देखकर उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसने गुस्से में जबड़े भींच लिए। अन्वय को अपने सामने अकेला देखकर सबके लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई।